वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। विशेष करके इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रभु, आप प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, उनके हृदयों को, उनके विचारों को खोल दें ताकि जब आपके वचन को सुने तो आपके वचन उनके हृदयों से बातचीत करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं। प्रभु, आप उन पर कृपा दृष्टि करें ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके वचन का लाभ उठा सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रिय मित्रों, पिछला अध्ययन हमने यीशु के द्वारा मंदिर के शोधन से अंत किया था। आज हम देखेंगे कि याजक और शास्त्री यीशु के अधिकार को चुनौती देते हैं, जबकि वे हर एक चमत्कार में उसके अधिकार को देख चुके थे। यीशु जानता था कि वे उसे मार डालना चाहते हैं, अतः वह उन्हें दुष्ट किसानों का दृष्टांत सुनाता है कि किस प्रकार दाख की बारी के स्वामी के पुत्र को उन्होंने मार डाला। वे धूर्त यीशु के लहू से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते थे, अतः उन्होंने यीशु को कैसर के हाथ में देशद्रोही के नाम से सौंप दिया, परंतु उन्होंने मुंह की खाई। उनमें एक धार्मिक पंथ और था जो सदूकी कहलाता था। ये पंथ आत्माओं में और मृतकों के जी उठने में विश्वास नहीं करता था। इन्होंने कहा, हम क्यों पीछे रहें? अतः उन्होंने एक मूर्खता भरा प्रश्न यीशु से पूछा और बुद्धिमानी का उत्तर पाकर मूर्ख बने। अब बचता है एक और धार्मिक पंथ जो धार्मिकता का बड़ा ढोंग रचता था। यीशु ने उनसे पूछा कि वे मसीहा को दाऊद की संतान क्यों कहते हैं, जबकि भजन संहिता 110 में दाऊद स्वयं मसीह को स्वामी या प्रभु कहता है, और उनकी खुल्लम खुला आलोचना की। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यीशु के अधिकार को चुनौती। लुका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में यीशु प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देता था। वह दार्शनिक सुकरात की नाई किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछता था। उसने उन लोगों से एक प्रश्न पूछा। हम लूका 20 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, यहूना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? इस प्रश्न का उत्तर देने का अर्थ था कि धर्मगुरु स्वयं को दोषी ठहराते, अतः वे परस्पर विचार विमर्श करने लगे। तब हम आगे पढ़ते हैं 20 अध्याय उसके 5 से 8 पद में, तब वे आपस में कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हमें पतरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता है। सो उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। मेरे मित्रों, उनके मन में उठा यह प्रश्न ईमानदारी का नहीं था। वे जानते थे कि उनके उत्तर में उत्पन्न दूसरा प्रश्न उन्हीं पर वार करेगा, अतः वे चुप रहे, क्योंकि वे यूहन्ना की बुलाहट को जानते थे और यीशु के अधिकार को भी। अब हम आगे देखते हैं दुष्ट किसान। यह दृष्टांत मत्ती और मार्कुस में भी है। हम लुका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, तब लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा कि किसी मनुष्य की दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया, बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय पर उसने किसानों के पास दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग ले लें, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। दाख की बारी का मालिक समाचार लाने के लिए समय समय पर अपने दासों को भेजता था। ये किसान उन्हें मार पीट कर भगा देते थे। यह प्रतीक था भविष्यवक्ताओं का, जिन्हें इसराइल कष्ट दिया और कुछ को मार भी डाला। अंत में उसने अपने पुत्र को भी भेजा। पुत्र प्रभु यीशु है और वह उन्हें संकेत दे रहा था कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करने को ठान चुके हैं। उसका क्रूशीकरण निश्चित था। हम लूका 20 उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। मित्रों, उनकी समझ में तो वे उसे मारकर सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु सच्चाई तो यह थी कि वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। कोने का पत्थर निकम्मा जाना गया था, परंतु अंत में देखा गया था कि वही कोने का मुख्य पत्थर था। इसी रूप में यीशु को उन्होंने त्याग दिया था, परंतु वही राज्य का प्रमुख ठहरा जो आएगा तब प्रकट होगा। हम लूका 20 उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आज आप और मैं उस पत्थर पर गिरने के कारण मन और आत्मा में टूटेंगे, क्योंकि हम पापी हैं। इस पर गिरने के परिणाम स्वरूप हमें उद्धार मिलेगा और एक ऐसी नींव मिलेगी जो किसी मनुष्य के द्वारा रखी नहीं गई। यह पत्थर हमारा प्रभु यीशु है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दानियल अध्याय 2 में लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न में एक विशाल मूर्ति देखी थी जिसे एक पत्थर ने चूर चूर कर दिया था। यहाँ यीशु की उपमा का अर्थ स्पष्ट है, इसका दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कैसर का कैसर को दो। लुकार्ची सुसमाचार 20 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, उसी घड़ी शास्त्रियों और महायाजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा है, परंतु वे लोगों से डरे। धर्मगुरु यीशु के इस दृष्टांत को स्पष्ट समझ गए थे, परंतु आज के अनेक विश्वासी इसे अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं। हम लूका 20 उसके 21 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे यह पूछा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एक दिखावा है। तब हम आगे पढ़ते हैं 20 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान दें कि यह प्रश्न हेरोदपंथियों का था, क्योंकि उनके मन में कैसर से छुटकारा पाना और हेरोदेस को राजा बनाने का विचार था। हम आगे देखते हैं लूका 20 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा हुआ है, उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी मूर्ति और नाम है। उन्होंने कहा, कैसर का। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि वे यीशु को फंसाना चाहते थे। यदि यीशु कहता नहीं तो रोमी सैनिक उसे विद्रोह का आरोप में बंदी बना लेते, और यदि वह कहता हाँ तो वह मूसा के निंदा करता और उस पर पथरवाह किया जाता। यीशु का उत्तर अपने आप में अद्वितीय था। उसने रोम की मुद्रा मांगी, क्या उसके पास पैसा नहीं था? वह उन्हीं से सिक्का भी निकालना चाहता था। हम 20 अध्याय उसके 25 पद में आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यहां पर ध्यान दें, रोम व्यवस्था न्याय व्यापार और प्रावधानों के लिए कर वसूली करता था, यह उनकी आमदनी थी। परमेश्वर ने भी हमारे लिए अनेक प्रबंध किए हैं, अतः हमें उसे भी देना है, और हमारा उत्तर दायित्व जीवन के दो क्षेत्रों में है, स्वर्गिक और सांसारिक। परमेश्वर के उत्तरदायित्व में हमारा शारीरिक और आत्मिक कल्याण है। हम तीर्थ यात्रियों को स्वर्ग में भंडार इकट्ठा करना है। सदूकी और पुनरुत्थान के विषय यीशु का उत्तर, हम लूका 20 अध्याय उसके 27 और 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 5 और 6 पद में व्यक्त है। यह एक विचित्र व्यवस्था है। रूत की पुस्तक में यह व्यवहार किया गया है। हम लूका 20 अध्याय उसके 29 से 33 पद में आगे पढ़ते हैं। सो सात भाई थे, पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे ने और फिर तीसरे ने उस स्त्री से ब्याह किया। इसी रीति से सातों बिना संतान मर गए, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। निसंदेह यह प्रश्न मूर्खता का था। हम लूका 20 उसके 34 से 36 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह और शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी न होगी, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम ध्यान दें कि मत्ती और मार्कुस के वृत्तांत में यीशु ने उनसे कहा कि उनकी समस्या थी, वे न तो धर्मशास्त्र जानते थे और न ही परमेश्वर के सामर्थ को समझते थे। हम लूका 20 उसके 37 और 38 पद में आगे पढ़ते हैं। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हेरोद पंथियों और फरीसियों को यीशु ने उचित उत्तर दे दिया तो सदूकियों ने अपनी टांग अड़ाई। सदूकी वैतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे, जबकि फरीसी रूढ़िवादी थे। वे आध्यात्मिक में विश्वास नहीं करते थे, अतः पुनरुत्थान में उनका विश्वास नहीं था। यह प्रश्न मूसा की व्यवस्था से संबंधित था। उन्होंने जो कहा वह वास्तव में अस्वाभाविक था कि छह भाई मर गए और उस स्त्री ने सात बार विवाह किया, परंतु ऐसी संभावना हो तो क्या होगा। आज ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने इतने विवाह किए हैं, परंतु उनका संबंध वर्तमान जीवन से ही है, अनंत जीवन से नहीं। सदूकी पंथ का उत्थान 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और याजक तथा राजनेता इसके अनुयायी थे। वे बहुत धनवान लोग थे। आज कलीसिया में राजनीति खेलने वाले और धन संपत्ति से परिपूर्ण सदस्यों की कलीसिया भी वैयक्तिक स्वतंत्रता के पक्षधर है। मानव स्वभाव बदला नहीं है, वे अलौकिक को स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण उनमें और फरीसियों में सामंजस्य नहीं था। वे धर्मशास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। रूढ़िवाद और वैतिक स्वतंत्रवाद के बारे में डॉक्टर लुइस वर्कहॉफ ने कहा है, इन दोनों में ऐसा महान अंतर है कि एक को मसीही नाम का त्याग करना होगा, और मेरे विचार में वैतिक स्वतंत्रतावादी मसीही नहीं है, उन्हें अपने आप को धार्मिक क्लब कहना चाहिए। एक समय ऐसा भी था मेरे मित्रों, जब नव जीवन से रहित जन कलीसिया में निष्कासित कर दिए जाते थे। वे धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करते थे। उन्हें साम्यवादी और धर्म त्यागी कहते थे, परंतु आज वे कलीसियाओं में प्रवेश कर चुके हैं। सदूकी मसीह यीशु के कट्टर वैरी थे और आरंभिक कलीसिया के सताव के पीछे भी उनका ही मुख्य कारण था और उन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई है। मसीह यीशु को कष्ट देने में सदूकियों के साथ फरीसियों का भी हाथ था। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद फरीसी जो पीछे हट गए थे, वे अब मसीह और उसके अनुयायियों को पीड़ा देने में रुचि नहीं रखते थे। सच तो यह है कि उनमें से अनेक मसीह को ग्रहण कर चुके थे, परंतु सदूकियों ने विश्वासियों का पीछा नहीं छोड़ा। इसके बारे में आप प्रेरितों के काम अध्याय 3 और 4 में पढ़ सकते हैं। पुनरुत्थान सदूकियों वरन आज के स्वतंत्रवादियों की विशेष परख है। धर्मशास्त्र में ध्यान देने की एक बात है, कोई भी सदूकी यीशु के पास उद्धार पाने के लिए नहीं आया था। निकोदिमुस नामक फरीसी ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। परंतु सदूकियों के मन परिवर्तन का उल्लेख धर्मशास्त्र में कहीं भी नहीं मिलता है। युवा प्रचारकों को शीघ्र ही बोध हो जाता है कि क्रूस का प्रचार श्रोताओं में रोष उत्पन्न करता है, उसे अपने नगर के जनमान्यों में स्थान नहीं मिलता है। अतः एक उनकी गुप्त अभिलाषा होती है कि मसीह यीशु के सुसमाचार को त्याग कर एक गणमान्य प्रचारक बन जाएं। यहूदा ने यीशु को बेच दिया था, पत्रस ने भी यीशु का इनकार कर दिया था, परंतु पश्चाताप किया और लौट आया। परंतु वह मनुष्य जो नाम कमाने के लिए यीशु को बेच देता है, वह लौट कर कभी नहीं आता। यर्मिया की पुस्तक 13 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे को बदल सकता है? यदि आप कभी यह सुने कि स्वतंत्रवादी ने मसीह को ग्रहण किया तो विश्वास न करें। पहली शताब्दी या 20वीं शताब्दी सदूकी मसीह यीशु के सुसमाचार के कट्टर वैरी थे। हम आगे देखते हैं शास्त्रियों से प्रश्न। यीशु या प्रश्नोत्तर का क्रम एक अंतिम प्रश्न से समाप्त करता है। हम लूकार्ची सुसमाचार 20 अध्याय उसके 39 से 47 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने यह कहा कि हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उस पर कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद का संतान क्यों कर कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान क्यों कर ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना आता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, यीशु अपने कुंवारी से जन्म लेने के सत्य को उजागर कर रहा था। दाऊद क्यों कर अपने ही वंशज को अपना स्वामी कहेगा? मित्रों, वह मसीह को प्रभु तभी कहेगा जब वह उसका प्रभु होगा। वह यदि प्रभु है तो पुत्र से बड़ा अवश्य है। उसे परमेश्वर का पुत्र होने के लिए कुंवारी से जन्म लेना आवश्यक था। यीशु यहाँ एक गहन विचार व्यक्त कर रहा था। यहाँ यीशु भजन संहिता 110 को विशेष बल देकर दाऊद का भजन कहता है और कहता है कि दाऊद ने जब यह भजन लिखा था तब उस पर पवित्र आत्मा आया था। प्रभु यीशु ने कहा कि यह भजन मसीह का संदर्भ देता है, जो प्रभु यीशु ही है। मित्रों, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में भजन संहिता में लिखा गया था, जो एक भविष्यवाणी थी। और यह भी सच है कि कोई भी व्यक्ति अपने वंशज के लोगों को प्रभु नहीं कहेगा जब तक कि वह सचमुच में प्रभु नहीं है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस संसार में सदूकियों और फरीसियों के साथ वार्तालाप किए और उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि वे जान जाएं कि प्रभु यीशु इस जगत में उद्धार देने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। जैसा कि हम सुसमाचार के अन्य भागों में भी पाते हैं कि वह अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। मित्रों, आज हमारे लिए एक दुखद बात यह है कि आज हम प्रभु यीशु के बारे में जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हुए भी उसे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए एक चुनौती है कि जो प्रभु मेरे लिए मरा, हम उसे स्वीकार करें। यह जान लें कि वह आपके पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा और इस सारे संसार के पापों के लिए मरा, ताकि हम उद्धार का आनंद प्राप्त कर लें। हम अपनी संपत्ति से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि हम प्रभु को अपना जीवन दे दें। मेरे मित्रों, वो आपसे प्रेम करता है। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप तंगी हालत में हो, वह आपके जीवन को बचाना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वह आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन को चाहता है, आपकी संपत्ति को नहीं। क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? आज आप निर्णय लें। यदि हाँ, तो प्रभु यीशु आपके पापों के लिए भी मरा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए कि आप हमारे पापों के बदले में क्रूस पर बलिदान हुए, और इसलिए कि हम उद्धार पाएं, हम शांति पाएं, हम आनंद पाएं, बीमारों से छुटकारा पाएं। प्यारे प्रभु, आज हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, जो अपने जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उनके जीवन में आनंद और शांति प्रदान करें ताकि वे आपको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उस महान शांति को पा सकें जो आपके सिवाय कोई भी नहीं दे सकता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारे श्रोता भाई बहनों को आशीष दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। किया है मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने देनी चाहिए तुम की अलावा कुछ ना